हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आखिरकार तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुम्हें पहले ही मना कर चुकी हूँ, मुझे तुमसे किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? क्यों बार बार तुम मेरी जिंदगी में आ जाते हो? क्यों बार बार तुम मेरे रास्ते में आ जाते हो? समझे तुम? ऐसा कहकर सोनम जल्दी ही वहां से निकल गई थी, और अक्षत ने गुस्से से मुक्का बनाकर उसे कमरे की एक दीवार पर मार दिया था और कहने लगा था, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें तो मैं हर हाल में अपना बनाकर रहूंगा और हर हाल में तुम्हें पाकर रहूंगा। ऐसा कहते हुए अक्षत जल्दी ही सोनल के पीछे पीछे पार्टी में जाने लगा था। जैसे ही सोनल पार्टी में गई तो तारा ने सोनल को देखते ही मन में पूछा था, क्या हुआ था, कहाँ रह गई थी तुम? तभी तारा को सोनल के ठीक पीछे अक्षत आता हुआ दिखाई दिया था और वो सब कुछ समझ चुकी थी और कहने लगी थी, तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, वो अक्षत तुम्हारे पीछे आता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं समझ चुकी हूँ कि जरूर उसी ने तुम्हें तंग किया होगा। तभी सोनल का मन किया कि वो तारा को बता दे कि उसने भी आगे बढ़कर आज अक्षत को किस किया था, लेकिन वो कुछ सोचकर चुप हो गई थी और फिर कहने लगी थी, एक बार तुम्हारा ये मेहंदी का फंक्शन कम्प्लीट हो जाए उसके बाद आज रात को ही मैं इस अक्षत से जरूर मिलूंगी और उससे सारी बातें क्लियर करूंगी। कहीं ना कहीं सोनल की बात सुनकर तारा हैरान थी, लेकिन उसे उस वक्त कुछ नहीं कहना चाहती थी। जल्दी ही बड़े ही धूमधाम के साथ एक बार फिर धरा और तारा का मेहंदी का फंक्शन होने लगा था, और वहीं काली शक्तियों का मालिक अमित बार बार सिर्फ और सिर्फ अमन को देख रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अमन के दिल पर वार किया था और उसके दिल में ये बात थी कि वो अमरेंद्र जी को अपने पिता नहीं मानता, वो सिर्फ अमन को अपना दोस्त मानता है। तो उसने कहीं ना कहीं अमन के दिल पर वार किया था। उसे अमन के दिल की कमजोरी का एहसास हो चुका था और वो बहुत ही ज्यादा खुश था। आज से ठीक दो दिनों के बाद यानी कि कल के बाद संगीत होना था, और संगीत से पहले पहले काली शक्तियों के मालिक अमित ने डिसाइड कर लिया था कि जब सब लोग नाच गाने में बिजी रहेंगे, ठीक उसी वक्त वो मौका देखकर अमन के जिस्म में अपने दानव का प्रवेश कराएगा और उसके बाद वो सारी चीज़ों का मजा लेगा। वहीं तारा मेहंदी के फंक्शन को खत्म होने के बाद अपने कमरे में थोड़ी देर अकेले रहना चाहती थी ताकि वो रीत का आवाहन कर सके, क्योंकि उसे इस समय रीत की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो गया था कि जिस तरह से उस फूल ने पहले हरा रंग बदला था और उसके बाद सीधा लाल रंग बदला था, तो इतना तो वो समझ चुकी थी कि कोई ना कोई बहुत बड़ा काल इस वक्त आने वाला था। तो उसे खतरे को समझकर तारा को रीत को जल्द से जल्द बुलाना ही था। लेकिन लास्ट टाइम जब वो अपनी माँ यानी कि रानी माँ से मिली थी, रानी माँ के चेहरे पर कुछ अलग तरह के भाव थे। तारा कहीं ना कहीं उन्हें समझने की भी कोशिश कर रही थी और उसे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था मानो कि उसे कुछ छुपाया जा रहा था। फिलहाल मेहंदी का फंक्शन बड़े ही शानदार तरीके से कम्प्लीट हो चुका था, लेकिन अक्षत वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा था। इधर सोनल सारी डेकोरेशन वगैरह समेट रही थी और सभी लोगों को गाइड कर रही थी, और अक्षत उसे खड़ा होकर घूर रहा था। कहीं ना कहीं सोनम अक्षत को देख चुकी थी, लेकिन उस वक्त वो उसे कुछ नहीं कहना चाहती थी। और जल्दी ही सोनल अपना काम खत्म करके वो बंगले के अंदर आ गई थी, और अक्षत जो काफी देर तक अकेला गार्डन पर खड़ा रहा तो उसके पास भी वहां से जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। और फिर खुद ही वो सोचने लगा था कि आखिरकार उसे क्या हो गया है। अमन को वो देखना तक पसंद नहीं करता था, लेकिन अब अमन के फंक्शन में सबसे आखिर तक वहीं रुक रहा था, सिर्फ और सिर्फ सोनल के लिए, और सोनल उसे देखती तक नहीं है, उसे भाव तक नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं अक्षत काफी ज्यादा हैरान परेशान था। अक्षत की जिंदगी में आज तक कोई लड़की नहीं आई थी। जब से उसने सोनल को देखा था वो उसकी ओर पूरी तरह से आकर्षित हो चुका था और वो हर हाल में अब उसे पाना चाहता था। जब उसे लगा कि अब सोनल बाहर नहीं आने वाली है, तब अक्षत अपने घर की ओर रवाना हो चुका था। वहीं सोनल आज मन में डिसाइड कर चुकी थी कि आज वो अक्षत को मजा जरूर चखाएगी और उसे इस तरह से उसका पीछा करने से रोकेगी, क्योंकि इस तरह से सोनल के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो सकती थी। और अभी सोनल का ध्यान सिर्फ और सिर्फ तारा की मदद करने पर था, क्योंकि वो ये तो समझ चुकी थी कि अमन पर कोई ना कोई बड़ा खतरा है, लेकिन वो खतरा क्या था वो तारा और सोनल दोनों ही नहीं समझ पा रही थी। वो अपने जादू का प्रयोग भी अच्छी तरह से कर चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। अब उनके पास अमित पर नजर रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। और कहीं ना कहीं जब तारा तितली बनी थी यानी कि बटरफ्लाई बनी थी, तब उसने एक छोटी सी लाल रंग की शीशी अमित के कमरे में देखी थी, लेकिन उस शीशी में क्या था उसके बारे में भी उसे जानना था। इसके लिए तारा ने सोनल के मन में ये बात डाल तो दी थी, लेकिन सोनम को और ना ही तारा को मौका मिल पा रहा था कि वो काली शक्तियों के मालिक अमित के कमरे में जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का भी अंदेशा था कि अगर वे इस तरह से अपने असली रूप में अमित के कमरे में जाएंगे तो अमित उनके साथ किसी न किसी तरह की हरकत कर सकता था, और अभी वे अपना जादू अमित पर इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी जब तक कि अमित का सच वो सबके सामने ना ला दें। अब तारा ज्यादा देर नहीं करना चाहती थी। जैसे ही वो कमरे में आई उसने देखा कि अमन भी उसके साथ था। तारा को कुछ ना कुछ करके अमन को वहां से भेजना था, तो इसलिए उसने अमन से कहा था कि वो अभी के लिए कपड़े चेंज करना चाहती है, तो प्लीज आप यहाँ से चल जाएं। जैसे ही तारा ने ये कहा अमन उसे घूर कर देखने लगा था और कहने लगा था, ओह तुम कपड़े चेंज करना चाहती हो, तुम मेरे सामने भी तो कपड़े चेंज कर सकती हो, ऐसा क्या, मैंने आज तक तुम्हें क्या बिना कपड़ों के नहीं देखा है। जैसे ही अमन ने ये कहा, तारा उसे केवल घूर कर रह गई थी। वो समझ चुकी थी इस वक्त अमन के साथ बहस करना बेकार है। वो ये भी जानती थी कि अगर अमन को उस पर शक हो गया तो अमन कितने सारे सवाल कर सकता था, और इस वक्त तारा का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो अमन के किसी भी तरह के सवालों का कोई जवाब दे। इसलिए तारा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा था, वो पतिदेव आप तो मेरी बात भी नहीं समझते हैं, अगर आप मुझसे इतना प्यार करते हैं आपको क्या लगता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तैयार होना चाहती हूँ, थोड़ा सजना सवरना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि एकदम से आप मुझे सजा सवरा देखें फिर मेरी ढेर सारी तारीफें करें। जानबूझकर तारा ने टिपिकल बीवियों वाली बात करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अमन को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, अमन को उसी की लैंग्वेज में हैंडल किया जा सकता है। अगर अमन अभी तो ज्यादा फ्लर्टी हो गया है, इतना ज्यादा दिल फेक हो गया है, तो तारा को भी थोड़ा सा फ्लर्टी थोड़ा सा दिल फेक होना ही था, तो इसलिए उसने जानबूझकर इस तरह की बातें करना शुरू कर दिया था।
अब अमन तारा की ये बात सुनकर कि तारा उसके लिए तैयार होना चाहती है, वो फटाफट से कहने लगा था, ओ रियली ऐसी कुछ बात है तो बिल्कुल तुम तैयार हो सकती हो, मैं जा रहा हूँ, मैं तब तक मॉम के पास जाता हूँ। मॉम मुझे लगता है कि मुझसे नाराज है, क्योंकि कल मैं तुम्हें ज़बरदस्ती मॉम के पास से ले आया था ना, इसलिए मैं जाकर उनसे बात करके आता हूँ। ऐसा कहकर अमन जल्दी ही कमरे से निकल गया था, और तारा ने मन ही मन में खुद को शाबाशी दी थी कि ये आइडिया उसने पहले उसे क्यों नहीं किया, ये आइडिया वो पहले भी तो यूज़ कर सकती थी। अगर वो पहले अमन की लैंग्वेज में बात करती तो शायद उसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। अब देर आए दुरुस्त आए तो कहीं ना कहीं सोचते हुए तारा ने जल्दी एक चुटकी बजाकर अपने लिए एक नॉर्मल कपड़े पहन लिए थे, और उसके बाद उसने जल्दी ही कड़े मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया था और रीत का आवाहन करना शुरू कर दिया था। वहीं पर लोक में जैसे ही रानी माँ को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी बेटी रीत का आवाहन कर रही है, तब उसने रीत को अपने पास बुलाया था और कहने लगी थी, अब तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी, तुम्हें इस वक्त पृथ्वीलोक जाना होगा क्योंकि तारा को तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान रखना होगी, परीलोक में क्या हो रहा है इसकी कुछ ज़रा सी भी खबर तुम तारा को नहीं दोगी, क्योंकि अगर तुमने उसे किसी तरह की कोई खबर दी तो इससे तारा परेशान हो सकती है, जो कि उसके और उसके बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे भी उसका बच्चा पैदा होने में केवल 3 महीने बाकी हैं, ऑलरेडी 1 महीना भी गुजर चुका है, अब जल्दी ही जिन्नातों का वंशज पैदा हो जाएगा, उसके बाद केवल 15 दिन और, 15 दिनों के बाद वो शक्तिशाली हो जाएगा कि आसानी से इस राक्षस का अंत कर पाएगा। रीत अपना सर झुकाकर रानी माँ की बात सुन रही थी और कहने लगी थी, रानी माँ आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे आप कहेंगी वैसा ही करूँगी, और मुझे तो केवल इसी बात की खुशी है कि आपने पृथ्वीलोक जाने के लिए मुझे चुना है। आप नहीं जानते मुझे पृथ्वीलोक देखने का कितना ज़्यादा शौक था, जब से तारा पृथ्वीलोक गई है मेरा भी मन पृथ्वीलोक देखने का कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी इच्छा आज जाकर पूरी हुई, आप नहीं जानते मैं आज कितना ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा कहकर रीत झूमने लगी और गोल गोल घूमने लगी थी। तब रानी माँ रीत को डांटते हुए बोली थी, अपनी भावनाओं पर तुम्हें थोड़ा सा काबू रखना होगा, और तुम्हें भूल कर भी तारा को ये बात नहीं बतानी है कि इस वक्त परीहोक पर कितनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। तभी रीत ने रानी माँ की ओर देखते हुए कहा था, रानी माँ आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तारा को कुछ भी नहीं बताऊँगी, अब आप बस मुझे पृथ्वीलोक जाने की इजाज़त दीजिए, क्योंकि मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रही हूँ, मैं जल्द से जल्द जाकर पृथ्वीलोक को देखना चाहती हूँ। तभी रानी माँ ने अपनी कुछ जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए रीत के ऊपर जादू भूक दिया था और उसे कहने लगी थी कि तुम्हारी सूरत मैंने काफ़ी ज़्यादा मामूली सी दी है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी खूबसूरती के साथ तुम्हें पृथ्वीलोक पर भेजूंगी तो पृथ्वीलोक के जो इंसान हैं वो तुम्हारी ओर पूरी तरह से आकर्षित हो जाएंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम्हें उससे बचने के लिए मैं तुम्हें काफ़ी मामूली सी शक्ल सूरत दे रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती जिस तरह से सोनल को एक इंसान की वजह से मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है तुम्हें भी करना पड़े, साथ ही साथ मैं तुम्हें ये जादुई माला दे रही हूँ, जब तक ये माला तुम्हारे गले में रहेगी तुम आराम से गायब होकर जो भी तुम्हें तारा काम देगी वो कर पाओगी, तुम समझ रही हो ना मेरी बात। रानी माँ की बात सुनकर रीत ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया था और जादुई माला अपने हाथों में ले ली थी और कहने लगी थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी, अब आप मुझे प्लीज़ पृथ्वीलोक जाने का मंत्र मेरे ऊपर फूंक दीजिए और मुझे पृथ्वीलोक भेज दीजिए। ऐसा कहकर जल्दी ही रीत ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तब रानी माँ ने हल्का सा मुस्कुराकर रीत की ओर देखा था, कहीं ना कहीं वो रीत का एक्साइटमेंट देखकर हैरान थी और साथ ही साथ उन्हें इस बात से कुछ भी खुशी हो रही थी कि चलो उसे थोड़ी बहुत खुशी तो मिल रही थी। और जल्दी ही रानी माँ ने रीत के ऊपर मंत्र का उच्चारण कर दिया था और देखते ही देखते रीत गायब होकर सीधा पृथ्वीलोक जाने लगी थी।
रीत के गायब होने के बाद अचानक रानी परी को एक बार फिर परीलोक में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी थी।